सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे आपराधिक प्रक्रिया इन ब्रैकेट पहचान विधेयक 2022 के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अब बाकायदे कानून बन चुका है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर इन ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, लेकिन चूंकि अब यह एक्ट बन चुका है तो आप इसे कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर इन ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। यह जो एक्ट है फ्रेंड्स, यह अप्रैल के उत्तरार्ध में कह लीजिए कि सेकेंड हाफ में पारित हुआ है संसद से, और बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो एक्ट बन जाता है। उस दौरान चूंकि मेरी क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, आपको ध्यान होगा कि उस समय मैं करंट अफेयर्स पर आप सबसे बातें नहीं कर पाता था, क्योंकि पहले से ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे और उसमें मैंने फिलॉसफी विषय पर आप सबसे बातें की थी। और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अवसर होता है जब किसी एक विषय को लेकर के मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और ये बात आप सबको बहुत पसंद भी आती है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि इस दौरान जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस रही हैं, वो छूटने ना पाएं, जिन्हें मैं बाद में आप सबके सामने रखता हूं। और आपको ध्यान होगा कि ऐसा मैंने ऑफलाइन क्लासेस के खत्म होने के बाद किया भी है। लेकिन दो टॉपिक अभी भी बचे रह गए हैं, जिसमें से एक की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, और एक जो टॉपिक है वो दिल्ली के जो नगर निगम हैं उन्हें एकीकृत किया गया है, उस पर फिर मैं बाद में बात करूंगा। हालांकि मैं चाह यही रहा था कि इस विषय को भी मैं पहले ले लूं, लेकिन लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं और खबरें सामने आ जाती थी कि मैं इसे नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, इसके लिए अब समय थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे अब इस विषय पर बात कर ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पर आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं, और मैं बताना चाहूंगा कि यह प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक इस साल के प्री एग्जामिनेशन का सवाल है, देखिए चूंकि यह आप यूं कह लीजिए कि अप्रैल के थर्ड वीक में संसद के द्वारा पारित किया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में इस पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेक्स्ट ईयर के प्री में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाने का जो समयावधि होती है वो लगभग एग्जामिनेशन से सवा साल पहले की तो होती ही है। तो आप उस दृष्टि से इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। हाँ, अभी जो मेन्स होंगे उसमें डेफिनेटली यह जो टॉपिक है मुझे काफी महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। तो आइए इस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए, मैं लगातार आप सबसे एक अनुरोध करता हूं, या यूं कह लीजिए कि निर्देश देता हूं या सजेस्ट करता हूं, वो ये कि जब भी कोई इस तरह के एक्ट आते हैं या कोई भी योजना प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, तो थोड़ा सा गौर उसके आप नाम पर किया कीजिए। उस नाम से उसके चरित्र के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। जैसे ये जो बिल पारित हुआ है, इसका देखिए नाम क्या है, आपराधिक प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि कोई एक अपराध हुआ, कोई एक घटना घटित हुई, आपराधिक घटना हुई, ठीक है। अब उसमें कोई ना कोई अपराधी माना गया कि इस घटना को किसी ने अंजाम दिया होगा, चाहे संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार करें या जो भी करें, कोई ना कोई अपराधी होगा, तो ये अपराधी हो गया। अब ये है आपराधिक प्रक्रिया। अब उसकी जो प्रोसीजर होगी कि किस तरीके से अपराधी की पहचान की जाए, किस तरह से अपराधी तक पहुंचा जाए, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ कानून यह है। लेकिन ब्रैकेट में दिया हुआ है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस एक्ट का संबंध केवल अपराधियों के पहचान से है, बस और कुछ नहीं। केवल कि अपराधियों के पहचान के लिए पुलिस को या सरकार को क्या क्या अधिकार दिए जा सकते हैं, वही यहां दिए गए हैं इस कानून के जरिए। तो आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यह जो एक्ट है इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राइट। ये एक्ट है, याद रखिए, यहां संशोधन विधेयक नहीं है। देखिए, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया होगा। जो भी वक्त बचेगा यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, लेकिन मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूँ जो शायद आपको पढ़ने को नहीं मिला हो। देखिए, ये संशोधन विधेयक नहीं है, ये सीधे सीधे बिल था, एक्ट था, संशोधन बिल नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बारे में पहले से ही एक एक्ट बन चुका है और ये 102 साल पुराना एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था। 102 साल पहले तो अंग्रेजों ने बनाया होगा। बकायदे 1920 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट यानी कि जिन्हें आपने बंदी बना लिया है उनके आइडेंटिफिकेशन से संबंधित यह एक्ट था। तो समय हमारा संविधान तो आया नहीं था, और सीधी सी बात है कि आप कोई भी जब एक्ट बनाएंगे तो अगर संविधान में उसका उल्लेख है तभी आप उसको संशोधित करेंगे। अगर वो संविधान से बाहर की बात की जा रही है तो संशोधन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे नीति आयोग की स्थापना की गई, गठन किया गया, तो इसके लिए आपको कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि संविधान में ऐसा था ही नहीं कि उसकी जगह प्लानिंग कमीशन को लाया गया है। तो प्लानिंग कमीशन चूंकि संविधान में उल्लिखित है तो आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जिसके तहत प्लानिंग कमीशन की आपने स्थापना की, तब आप नीति आयोग को लेकर के आएंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये 102 साल पुराने उपनिवेशवादी कानून की जगह पर लाया गया है, तो पहली बात तो इसको वेलकम करना चाहिए कि हम कम से कम अपने कानून अब बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी बात जो इस कानून को लाए जाने का जो एक प्रमुख कारण है वो ये है कि आप देखिए, आप 100 साल पीछे चले जाइए, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या थी और आज हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की क्रांति आपको दिखाई दे रही है, तो सीधी सी बात है कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है, वार में हो रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने इरादों को अंजाम देने के लिए कर सक रहे हैं, तो फिर हमारी पुलिस क्यों नहीं कर सकती अपराधियों की पहचान करने में। बस कुल मिलाकर के ये है कि नई तकनीक का इस्तेमाल अपराधियों की पहचान के लिए किए जाने का अधिकार यह एक्ट पुलिस को, या यूं कह लीजिए सरकार को देती है। मेरी समझ से सरकार शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होगा। तो 1920 के एक्ट के तहत क्या था, क्या प्रोविजन थे? उस समय प्रोविजन ये था कि आप जो अपराधी होगा उसके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, उंगलियों के निशान ले लीजिए, फुटप्रिंट भी ले सकते हैं, पैरों के निशान ले लीजिए और उसकी फोटो खींच लीजिए, बस खत्म। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी यहीं तक थी। अब इसमें दूसरी चीजें भी ऐड कर दी गई हैं, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। बकायदे पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो ये सब तो करें ही करें, साथ ही साथ वे बकायदे हथेलियों की छाप ले सकते हैं, आंखों के जो आयरिस और रेटिना होते हैं उनका बायोमेट्रिक डेटा ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंखों के जो आयरिस हैं और रेटिना, अगर आप उसका डेटा ले लेते हैं, क्योंकि यहां कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रह जाती है। यहां तक कि जो बायोलॉजिकल डेटा है, जैसे आप खून रक्त के नमूने ले सकते हैं, बाल का नमूना रख सकते हैं, आप बकायदे लार का नमूना ले सकते हैं, ये सारे आप नमूने ले सकते हैं। बकायदे आप हस्ताक्षर या उसकी जो लिखावट है उसका भी डेटा रख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये सारी बातों में कितना विस्तार कर दिया गया है, और ये ऐसा इसलिए किया जा सका क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। दोस्तों, इसके बाद जो 2-3 पॉइंट्स और हैं वो ये हैं कि ये जो डेटा होंगे इन सबको डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा, डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा, ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो डेटा है उसे केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, वहां जमा कर दिया जाएगा। वहां यह डेटा सुरक्षित रहेगा और 75 ईयर्स के बाद ये डेटा खत्म कर दिए जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो अपराधी होंगे इस बीच में, चूंकि वो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो फिर अब रखने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। दोस्तों, होता यह था कि जब हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं थी तो बहुत से अपराधी केवल पहचान न हो पाने के कारण छूट जाते थे। दूसरा यह कि चूंकि पहचान करने में देरी लग रही है तो न्याय में भी देरी होती थी। यह भी होता था कि पहले किसी ने कुछ गवाही दी और बाद में फिर उस अपने गवाही से मुकर गया, कुछ और गवाही दे रहा है, तो उससे पता लगा कि फिर से जो मामला था वो उलझ गया है, तो उसमें भी न्यायिक व्यवस्था में काफी देरी होती थी। अब इसकी वजह से होगा ये कि चूंकि अपराधियों की पहचान बहुत ही सटीक तरीके से हो सकेगी, बहुत जल्दी हो सकेगी, और चूंकि डेटाबेस हमारे पास पहले से रहेगा तो जो अनुमान भी लगाए जाएंगे वो बेहतर तरीके से लगाए जा सकेंगे, तो न्यायिक व्यवस्था में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, न्याय जल्दी से हो सकेगा। और वैसे भी आप देखते हैं कि अपराधियों को अपराधी ठहराए जाने का जो प्रतिशत है, या कह लीजिए कि जो जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनको अपराधी ठहराए जाने का जो प्रतिशत है हमारे यहाँ बहुत कम है, और उसका कारण यही है कि हम उनकी पहचान ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इससे ये थोड़े से लाभ होने की संभावनाएं हैं। जब यह विधेयक पारित हो रहा था तो डेफिनेटली इसके विरोध में कुछ बातें कही गई, कुछ शंकाएं व्यक्त की गई। जैसे एक शंका यही थी कि इसका इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों के लिए कर सकती है, राजनीति बदले के लिए कर सकती है, कुछ समूहों के लिए कर सकती है, उसके लिए बकायदे इस एक्ट में प्रावधान है। एक्ट में ये कहा गया है कि जिन लोगों के जो डेटा लिए जाएंगे वो केवल वे लोग होंगे जो दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हों, सामान्य अपराधों के लिए नहीं, जो दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हों। खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यदि कोई अपराध है तो उसे उसका जो डेटा है, बायोलॉजिकल डेटा, वो अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को राजनीतिक मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो वह इस दायरे से बाहर होगा, उसका कोई डेटा नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि यह राजनीतिक व्यक्ति आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ है तो उस पर फिर यह कानून लागू हो जाएगा। कुछ लोगों का दोस्तों ये भी कहना है कि चूंकि डेटा लिया गया है और यह डेटा पता नहीं कितना सुरक्षित रह सकेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी एजेंसीज के हाथ में यह डेटा पड़ जाए और उसका गलत इस्तेमाल होने लगे, और इससे जो हमारे निजता का अधिकार है वो बाधित हो सकता है। इस तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं। लेकिन सरकार ने इंश्योर किया है कि चूंकि यह पूरी की पूरी सेंट्रल एजेंसी है, जो केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, डेटा उसी के पास रहेगा, तो इसलिए दूसरे के हाथों में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह भी कहा गया है कि हमारे यहाँ अभी तक डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, और यदि जल्दी से जल्दी कानून बना लिया जाए तो थोड़ा सा उनकी जो सुरक्षा है डेटा की वो और ज़्यादा सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन अभी तो उस पर काम चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। संदर्भ के रूप में मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले हांगकांग में जो स्टूडेंट थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, और उस समय फिर सरकार ने वहां के इस तरह के डेटा का उपयोग उनके दमन करने के लिए किया था, और इसके आधार पर भी लोग अपना संदेह इस मामले को लेकर के व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यह है फ्रेंड्स कि अगर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हम कदम मिलाकर के नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली केवल इसी मामले में नहीं बल्कि जो हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी हम काफी पिछड़ जाएंगे। तो इस टॉपिक पर मैंने थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण जो बेसिक बातें हो सकती थी वे आपके सामने रखी हैं, और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानकर अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्र को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।